भागवत सार की श्रृंखला में तीसरे स्कंद के 12वें अध्याय पर आज चर्चा होगी। कृपया इस श्लोक को दोहराएं। दूसरा श्लोक है इस अध्याय का। ससर्जाग्रंथतामिश्रम अथ तामिश्रमादिकृ महामोहं च मोहं च तमश्च ज्ञानवृत्तयः ससर्जाग्रंथतामिश्रम् अथ तामिश्रमादिकृ महामोहं च मोहं च तमश्च ज्ञानवृत्तयः ससर्जाग्रंथतामिश्रम् अथ तामिश्रमादिकृ महामोहं च मोहं च तमश्च ज्ञानवृत्तयः। सर्वप्रथम अंधतामिश्रम मृत्यु का भाव, अथ तब तामिश्रम हताशा और क्रोध आदिकृत, ये सभी महामोहम भोग्य वस्तुओं का स्वामित्व च भी मोहम भ्रांत धारणा च भी तमह आत्मज्ञान में अंधकार च भी अज्ञान अविद्या वृत्तयः पेशे या वृत्तियां। अनुवाद और तात्पर्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। ब्रह्मा ने सर्वप्रथम आत्म प्रवंचना मृत्यु का भाव, हताशा के बाद क्रोध मिथ्या स्वामित्व का भाव तथा मोहमय शारीरिक धारणा या अपने असली स्वरूप की विस्मृति जैसी अविद्यापूर्ण वृत्तियों की संरचना की। तात्पर्य, विभिन्न प्रकार की योनियों में जीवों की वास्तविक सृष्टि के पूर्व ब्रह्मा ने वे परिस्थितियां उत्पन्न की जिनके अंतर्गत जीवों को इस भौतिक जगत में रहना होता है। जब तक जीव अपने असली स्वरूप को भूल नहीं जाता तब तक जीवन की भौतिक अवस्थाओं में रह पाना उसके लिए असंभव है। अतः भौतिक जीवन की पहली दशा है अपने असली स्वरूप की विस्मृति। अपने असली स्वरूप को भूलने पर मनुष्य का मृत्यु से भयभीत होना निश्चित है। यद्यपि शुद्ध आत्मा मृत्यु रहित तथा जन्म रहित होता है, भौतिक प्रकृति के साथ ये झूठी पहचान उन वस्तुओं के मिथ्या स्वामित्व का कारण है जो श्रेष्ठ नियंत्रण की व्यवस्था द्वारा प्रदत्त होती हैं। जीव को समस्त भौतिक संसाधन इसलिए प्रदान किए जाते हैं कि वह शांतिपूर्वक रह सके और बद्ध जीवन में आत्म साक्षात्कार के कर्तव्यों को निभा सके। किंतु झूठी पहचान के कारण बद्ध जीव भगवान के संपत्ति के झूठे स्वामित्व के भाव में बंधक हो जाता है। इस श्लोक से यह स्पष्ट है कि स्वयं ब्रह्मा परमेश्वर की सृष्टि हैं और भौतिक जगत की पांच प्रकार की अविद्याएं जो जीवों को बद्ध बनाती हैं वे ब्रह्मा की सृष्टियां हैं। यह सोचना नितांत हास्यपद है कि जीव परम पुरुष के तुल्य है, जबकि वह यह समझ सकता है कि बद्ध जीव ब्रह्मा जी की जादुई छड़ी के वश में है। पतंजलि भी ये स्वीकार करते हैं कि अविद्या पांच प्रकार की है जिनका यहाँ पर उल्लेख हुआ है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमाओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बारहवां अध्याय है कुमारों तथा अन्यों की सृष्टि। तो भागवत पर चर्चा है इसीलिए भागवत से प्रार्थना सनातन गोस्वामी के रचित करेंगे।
सर्वशास्त्राधिपीयूष सर्ववेदैकसत्फल सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य सर्वलोकैकदृक्प्रद सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवतः प्रभो कलिध्वान्तोदिदादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तिता परमानन्द पाठाय प्रेमवर्षक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोऽस्तु ते। मदेकबन्धो मत्संगी मद्गुरु मन्महाधन मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानन्द नमोऽस्तु ते। असाधु साधु तदाई अतिनीचोचतः कर हानमुञ्च कदाचिन्मा प्रेम्णारुत्कण्ठयोऽस्फुरा।
हरे कृष्णा। तो इस अध्याय में अब विसर्ग का वर्णन सार में होगा। पिछले अध्यायों में हम लोग सर्ग और विसर्ग मिला जुला देख चुके हैं थोड़ा बहुत। तो अब ब्रह्मा जी सृष्टि प्रारंभ करेंगे। तो मैत्री मुनि पहले ही श्लोक से विदुर से कहना प्रारंभ करते हैं कि अब मैं तुम्हें ब्रह्मा के द्वारा की गई सृष्टि का वर्णन करता हूँ, अर्थात विसर्ग का। क्योंकि हमने देखा कि दसवें अध्याय में अंत में वे वर्णन करना चाहते थे मनुओं का, कैसे मनु आए, फिर कैसे सृष्टि हुई, और फिर उनके पहले उन्होंने काल का विषय कह दिया पिछले अध्याय में, और अब इस अध्याय में फिर से मनुओं के विषयों को कहना चाहते हैं। तो ब्रह्मा जी की सृष्टि का वर्णन कर रहे हैं कि ब्रह्मा जी कैसे हर दिन सृष्टि करते हैं। तो कहते हुए वो सबसे पहले आज का जो श्लोक हमने पढ़ा तो समझाते हैं कि ब्रह्मा जी अविद्या जनित वृत्तियों को सबसे पहले प्रकट करते हैं। पांच वृत्तियों का वर्णन इस श्लोक में उन्होंने किया जिनकी रचना ब्रह्मा जी करते हैं। तो इस श्लोक से लेकर करीब 20वें श्लोक तक, वैसे तो पूरा अध्याय ब्रह्मा जी की सृष्टि का ही है, तो अलग अलग सृष्टियों का वर्णन हुआ। 20वें श्लोक तक ब्रह्मा जी कैसे प्रारंभ में सृष्टि करते हैं, फिर चार कुमारों की सृष्टि होती है, फिर शिव जी की सृष्टि होती है रुद्र, इसका वर्णन कर देते हैं। फिर 21वें श्लोक से आगे ब्रह्मा जी अपने 10 पुत्रों को और प्रकट करते हैं ताकि वो प्रजनन क्रिया को बढ़ा सकें। और उसके बाद एक महत्वपूर्ण विषय आ जाता है, मैत्री मुनि वर्णन करते करते स्मरण करके उस विषय को कह देते हैं। तो ऐसे ही विषय आगे बढ़ेंगे जैसे जैसे हम लोग उस तक पहुँचेंगे, चर्चा करेंगे। तो ब्रह्मा जी ने प्रारंभ किया सृष्टि की रचना, तो उन्होंने पांच अविद्या के पांच स्तरों को सबसे पहले प्रकट किया, जिसमें तम, मोह, महामोह, तामिश्रम और अंधतामिश्रम, ये पांच चीजों को उन्होंने प्रकट किया जीव के लिए। प्रभुपाद तात्पर्य में समझाते हैं कि जब तक ये प्रकट ना हो जीव आनंद नहीं ले सकता, जब तक जीव मोह में ना हो भौतिक जगत में आनंद नहीं ले सकता। भौतिक जगत में हम आनंद तभी लेते हैं जब हम अविद्या में होते हैं, अंधकार में होते हैं, तमह में होते हैं, मोह में होते हैं, महामोह में होते हैं, तामिश्र अंधतामिश्र। तो ये पांच प्रकार की सृष्टि ब्रह्मा जी ने की। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य के अंत में समझा रहे हैं कि योग सूत्रों के रचयिता पतंजलि, उन्होंने भी इन पांच अवस्थाओं को स्वीकारा है, नाम अलग दिए हैं। तो वहां वो नाम देते हैं, तमह को नाम देते हैं अविद्या, फिर मोह को नाम देते हैं अस्मिता, और फिर महामोह को नाम देते हैं राग, तामिश्र को नाम देते हैं द्वेष, और अंध तामिश्र को नाम देते हैं अभिनिवेश। तो ये पांच अवस्थाओं को वो भी स्वीकार करते हैं। तो ये पांच अवस्थाएं क्या हैं जीव के लिए? तो सबसे पहला है तमह। तमह अर्थात मोह, एक प्रकार का मोह या अविद्या। अविद्या हमें बाध्य करती है जो चीज अशाश्वत है उसको शाश्वत मानने पर, जो चीज कष्ट है उनको सुख मानने पर। तो अविद्या क्या है? अशाश्वत को शाश्वत मानना, दुखों को सुख मानना, और जो हम नहीं हैं उसे स्व मानना, ये अविद्या है। या तमा है पहला, ये पांच हैं। विस्तार से तो वर्णन नहीं कर पाएंगे समय की कमी के कारण, क्योंकि हम लोगों को ये अध्याय पूरा करना है, लेकिन ये पांच अवस्थाएं केवल संक्षेप में जान लेना आवश्यक है। तो पहली अवस्था है अविद्या या तमः, जहां हम अशाश्वत को शाश्वत मानते हैं। जो चीज अशाश्वत है, समाप्त तो होने वाली है, उसको हम पकड़ लेते हैं और शाश्वत को छोड़ देते हैं। चाणक्य पंडित कहते हैं कि वो व्यक्ति बड़ा मूर्ख है जिसने अशाश्वत चीजों के लिए शाश्वत चीजों को छोड़ दिया, क्योंकि शाश्वत चीजें तो चली गई और जो हाथ में है वो भी चली जाएगी क्योंकि अशाश्वत है। अशाश्वत मतलब जो बहुत समय नहीं रहती है, थोड़े समय रहती है। जैसे हम लोग हाथ में रेत के कण पकड़ लें, प्रयास करें, धीरे धीरे सारे कण निकल जाते हैं। पानी को पकड़ें, पानी निकल जाएगा हाथ से। तो यही हमारी मूर्खता है, अशाश्वत को शाश्वत समझ लेना और जो दुख हैं उनको ही आनंद समझ लेना, जो अशुद्ध है उसको शुद्ध समझ लेना, ये अविद्या है। तो ये पहला स्तर ब्रह्मा जी ने रचना की। देखिए ब्रह्मा जी भी ये जो अविद्या का स्तर है ये ब्रह्मा जी रचना करते हैं, भगवान नहीं करते हैं। भगवान ब्रह्मा जी की रचना करते हैं, फिर ब्रह्मा जी ये सब रचना करते हैं। तो ये अविद्या पहली तमह उन्होंने किया। फिर दूसरा था मोह। मोह याने अविद्या हो गई, फिर अस्मिता दूसरा शब्द वो इस्तेमाल करते हैं पतंजलि सूत्रों में और अन्य स्थानों पर भी, कई आचार्यों ने भी अपने भजनों में इस शब्द को इस्तेमाल किया है। तो दूसरा अस्मिता। अस्मिता का क्या अर्थ है? मैं ये शरीर हूं, मैं और मेरा। तो तमह मतलब अशाश्वत को शाश्वत मान लेना और मोह मतलब मैं और मेरा, इसके परे कुछ भी नहीं है, इसको अस्मिता कहते हैं। अहम ममेति जीवस्य, जो लोगों का जो मोह है वो क्या है? अहम ममेति, मैं और मेरा। और ये सबसे बड़े मोह का कारण है। दरअसल जो हमारा है उसको तो हमने त्याग दिया है, लेकिन जिसको हम अपना मान रहे हैं ये मोह है, क्योंकि वो हमारा है नहीं। हमारा क्या है? हमारा धाम हमने त्याग दिया है, हमारा स्वरूप हमने त्याग दिया है, हमारे स्वामी को हमने त्याग दिया है। और स्वीकार क्या किया है? हमने एक ऐसा स्थान स्वीकार किया है जो हमारा नहीं है, ये भौतिक जगत, ये जीव का नहीं है। जीव का इसमें कोई कार्य नहीं है, ये बना ही नहीं है जीव के लिए। तो जीव ने आध्यात्मिक जगत को त्याग कर इसको मैं, मेरा जगत मान लिया है, ये मोह है। तो हमारा ये स्थान नहीं है, हमारा ये स्वरूप नहीं है, इसीलिए इस जगत में हम अन्य स्वरूप लेते रहते हैं। मुक्ति की परिभाषा यही है, मुक्तिर हित्वान्यथा रूपम। तो इसीलिए अलग अलग रूपों को लिए, स्वरूप नहीं है, ये अन्य रूप हैं, हमने अपने ऊपर लाद लिए हैं ये रूप। तो हमारा ये स्थान नहीं है, हमारा ये रूप नहीं है, और जिनको हम इस जगत में अपने स्वामी मानते हैं वो हमारे स्वामी नहीं है, क्योंकि वो हमें कुछ दे नहीं सकते हैं। इस जगत के जो स्वामी होते हैं वो थोड़ा बहुत धन दे देते हैं, थोड़ा बहुत आनंद दे देते हैं, वो आनंद जिसका आदि है और अंत है, और इसीलिए हम उनको स्वामी मानते हैं, और इसी कारण से हमारे स्वामी बदलते रहते हैं। जो व्यक्ति हमें आनंद देता है वो हमारा स्वामी हो जाता है, ये भौतिक जगत का नियम है। जो व्यक्ति हमारी इंद्रिय तृप्ति में मदद करता है वो हमारा मित्र, वो हमारा सुहृद, वो हमारा स्वामी हो जाता है। और जो व्यक्ति विरोध करता है, चाहे अच्छे उद्देश्य के लिए हो, वो हमारा शत्रु कहलाता है। इस जगत में शत्रु और मित्र की परिभाषा इंद्रिय तृप्ति पर आधारित है।
अगर आप मुझे मदद कर रहे हैं मेरी इंद्रिय तृप्ति में, अगर आप मुझे मदद कर रहे हैं मेरे भोग में, मेरे इस जगत में अस्तित्व को बढ़ाने में, आप मेरे मित्र हैं। लेकिन अगर आप विरोध करते हैं, आप ये कहते हैं कि ये गलत है, इसको बंद करो, तो आप मेरे शत्रु हैं। तो शत्रुता और मित्रता इंद्रिय भोग पर आधारित है, मैं और मेरा, तो इसे मोह कहते हैं। तो पहला था तमह, जहां अशाश्वत को शाश्वत मान लेना। दूसरा है मोह। वैसे ये अविद्या के ही स्तर हैं, अलग अलग। और दूसरा है मोह, जहां पर व्यक्ति अस्मिता कहते हैं इसको, जहां व्यक्ति मैं और मेरा में फंसा रहता है। आप देखिए जीवन भर यही है, मैं और मेरा, मैं हर चीज का केंद्र बना रहा हूं और मेरी चीजें मुझे आनंद देती रहे, बस। हर चीज व्यक्ति अपने लिए करता है। जब शूर्पणखा रावण के पास गई अपने नाक और कान कटवाकर लक्ष्मण जी से, और दुहाई देने लगी, बोलने लगी, पुकारने लगी, तो रावण को वो चिंता नहीं थी कि शूर्पणखा की नाक कटी है, रावण की चिंता थी मेरी बहन की नाक कटी है, मैं और मेरा। तो रावण इसलिए दुखी नहीं हुआ, इसलिए क्रोधित नहीं हुआ कि शूर्पणखा की नाक कट गई, मेरी बहन की नाक काटने की किसने हिम्मत की, ये मैं और मेरा। तो इसको मोह कहते हैं। तो अविद्या, अस्मिता और महामोह, तमह, मोह और महामोह, यहां पांच चीजों का वर्णन है। तो तमह, मोह और महामोह क्या है? महामोह को पतंजलि सूत्रों में राग कहा गया है। राग यानी आसक्ति। तो अविद्या, अस्मिता, राग, अर्थात हमें भौतिक चीजों से बहुत आसक्ति हो जाना, ये महामोह है। मोह तो है ही कि जहां व्यक्ति मैं और मेरा देखता है, लेकिन बहुत ज्यादा जब आसक्त हो जाता है इन चीजों में, यहीं पर आनंद खोजने का प्रयास करता है, तो ये महामोह में है। सोचता है मैं इसी जगत में आनंद ले लूंगा, मैं यहीं पर इन्हीं चीजों से, इन्हीं वस्तुओं से आनंद ले लूंगा। ये जड़ वस्तु कैसे आनंद दे सकती है? जड़ वस्तु में कोई आनंद नहीं है, आनंद जीव में है, आनंद जीवों के स्रोत में है, जिनसे जीव प्रकट हुए हैं उनमें सच्चा आनंद है, और वो है श्री कृष्ण। सारे रसों के आगार श्री कृष्ण है, रसिक शेखर श्री कृष्ण है। इसीलिए रूप गोस्वामी उन्हें कहते हैं कि वो सारे रसों के आगार हैं। तो सब रस उनसे आते हैं, सारा आनंद उनसे आता है, और उसको छोड़कर हम भौतिक चीजों में आनंद लेने का प्रयास करते हैं, इसलिए महामोह है। मिलने वाला नहीं है आनंद, ये तो केवल लगता है। थोड़ी चीजें आनंद दे देती हैं, व्यक्ति धन कमा लेता है उसको जरा सा आनंद मिल जाता है, उसको लगता है यही सब कुछ है। लेकिन देखिए जिन लोगों के पास करोड़ों करोड़ों रुपया है, क्या सही दृष्टि में आनंद है उनको? बिल्कुल नहीं। सुविधाएं हैं, आनंद नहीं है। ये दो अलग शब्द हैं, सुविधा और आनंद। धन से सुविधा खरीदी जाती है, आनंद नहीं। तो ये महामोह है। और चौथी रचना उन्होंने की तामिश्र, अर्थात द्वेष। द्वेष अर्थात जो कोई भी मेरे आनंद में बाधा है उसके प्रति विरोध होना, ये द्वेष है। कोई मेरी इंद्रिय तृप्ति में बाधा नहीं बनना चाहिए। अगर मैं बहुत बड़ा व्यक्ति, बड़ा गुरु बनना चाहता हूं, कोई विरोध करता है, द्वेष हो जाता है। अगर मैं कोई बहुत बड़ा व्यक्ति बनना चाहता हूं, बहुत धन कमाना चाहता हूं, जो विरोध करता है उससे द्वेष हो जाता है। द्वेष किससे होता है व्यक्ति को? जो प्रतियोगिता करता है आपसे। जो व्यक्ति आपसे प्रतियोगिता ही नहीं करता उससे क्या द्वेष होगा? प्रतियोगिता अर्थात वो आपको आपकी जो भी स्थिति आप चाहते हैं उसको बनने में बाधा है, इसीलिए द्वेष हो गया। देखिए वैसे इन चीजों को बड़े विस्तार से समझना बहुत आवश्यक है कि हमारे जगत हमारे जीवन में द्वेष किस लिए है। केवल यही आधार है हमारा, एक दूसरे से हम द्वेष करते हैं क्योंकि उसने मेरी इंद्र तृप्ति में बाधा कर दी, इसीलिए द्वेष है। तो ऐसी कोई भी चीज, ऐसी कोई भी वस्तु, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो हमारी इंद्र तृप्ति में बाधा है ना, उससे द्वेष उत्पन्न हो जाता है। हम उसके लिए बुरा सोचने लगते हैं, उसके नाश की बातें सोचने लगते हैं। भक्ति करते हुए भी ये तमोगुणी भक्ति है। आगे इसी स्कंद में कपिल मुनि वर्णन करने वाले हैं, उसके तमोगुणी भक्ति है जहां व्यक्ति हिंसा के द्वारा, हिंसा करते हुए या किसी का गलत करने के लिए भक्ति करता है। मान लीजिए कोई भगवान के पास आता है, भगवान बस एक ही प्रार्थना है, उस व्यक्ति का नाश करो, तमोगुणी भक्ति है, भक्ति नहीं है ये सही दृष्टि में। तो ये द्वेष है। और अंतिम चीज जो उन्होंने उत्पन्न की था अंधता मिश्र। अंधता मिश्र मतलब अविद्या को हम लोग प्रारंभ करें तो अस्मिता राग द्वेष और अभिन्निवेश। अभिन्निवेश मतलब पूर्ण रूप से मोह में पड़ जाना, उसको अंधता मिश्र कहते हैं। जैसे प्रभुपाद यहां इस श्लोक में वर्णन कर रहे हैं कि केवल शारीरिक देहात्म बुद्धि में फंसे रहना और मृत्यु से भयभीत रहना, ये अंधता मिश्र है। जीव की मृत्यु होती नहीं है, न शरीर की मृत्यु होती है, न शरीर मरता है न जीव मरता है, फिर मृत्यु का भय क्यों? शरीर तो अभी भी मृत है, क्या जीवित है शरीर? नहीं। और आत्मा, आत्मा की मृत्यु नहीं होती, न जायते म्रियते वा कदाचिन। तो मूर्खता है व्यक्ति की जब वो सोचता है कि कोई मर गया। कौन मरा है? दो ही तो चीजें हैं, एक शरीर और एक आत्मा। शरीर वैसे ही मृत है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती, तो मरा कौन है? मृत्यु का भय ये अंधता मिश्र है, ये अभिन्नवेश कहलाता है। बहुत ज्यादा शारीरिक स्तर पर बने रहना और मृत्यु के भय में रहना सदैव, तो इसको अंधता मिश्र कहते। तो ब्रह्मा जी ने ये पांच चीजों की रचना कर दी। अब कोई दोष दे सकता है ब्रह्मा जी को, क्या जरूरत थी ये सब बनाने की? कुछ अच्छी चीजें बनाते? ब्रह्मा जी को बुद्धि नहीं है, भगवान ने अज्ञान भी दे दिया, भागवत सुना दी चतुश्लोकी, फिर भी यही कर रहे हैं, क्या कारण है? जीव को आनंद देने के लिए इस भौतिक जगत में। जब तक जीव इन अवस्था में नहीं आता, यहां आनंद नहीं ले सकता। हम सब इस जगत में आनंद केवल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अविद्या में है, अहंकार मोह में है कि ये मेरा है, ये मैं हूं। अगर ये सब निकल जाए तो क्या आनंद लोगे आप? विचार कीजिए मन में, क्या किससे आनंद लोगे? अगर ये निकल जाए कि मैं शरीर हूं ही नहीं, मैं आत्मा हूं, मेरा इस जगत से कुछ लेना देना नहीं, क्या आनंद लोगे? जब हम किसी चीज को अपना मानते तभी तो आनंद बढ़ता है, तब हम उससे आनंद, ये मेरा मित्र है, ये मेरा संबंधी है, ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा धन है, ये मेरी संपत्ति है, ये मेरा साम्राज्य है, तभी तो आनंद बढ़ता है। लेकिन अगर ज्ञान हो जाए कि इससे मेरा कुछ लेना देना नहीं है, और इतना ही नहीं, मैं कष्ट में हूं, इसीलिए सबसे पहला तमह अविद्या, अशाश्वत को शाश्वत मानना, कष्टों को सुख मानना। लेकिन वही व्यक्ति समझ जाए कि यह सुख नहीं है, अरे एक कीड़े के समान मल के गड्ढे में मैं पड़ा हुआ हूं, क्या आनंद आएगा मुझे? क्या आनंद लेगा वो जीव, बताइए? लेकिन क्योंकि वो उसको नहीं मानता। जैसे इंद्र जब श्राप मिला, सुअर बन गए, गड्ढे में पड़े हुए मल खा रहे हैं, बृहस्पति ब्रह्मा जी आके बोल रहे, चलो इंद्र तुम तो राजा हो, यहाँ कहाँ गड्ढे में पड़े हुए क्या ही बदबू वाली चीजें खा रहे हो। इंद्र ने कहा, नहीं अगर ये नहीं है तो मैं स्वर्ग में नहीं जाऊंगा, क्योंकि स्वर्ग में जाना है तो ये सब चाहिए, नहीं तो मैं खाऊंगा क्या। और वो तो ठीक है, चलो खाने पीने की बात, ये मेरे संतानों का क्या होगा। ब्रह्मा जी ने, संतान कहां से आ गई तुम्हें, बोले लाइन लगी हुई है पीछे पूरी। अब देखते ना, एक सुअर चलता पीछे लाइन चलती है, टक 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 सब। इंद्र ने कहा, पूरी लाइन लगी हुई है, इनका क्या होगा, ये मोह है। हमारी भी स्थिति वही है, हम लोग आध्यात्मिक जगत में इंद्र क्या, इंद्र से भी ज्यादा ऐश्वर्य को प्राप्त कर सकते हैं, आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान आते हैं, भक्त आते हैं, शास्त्र बताते हैं, चलो इस गड्ढे से बाहर निकलो। हम कहते हैं, नहीं आध्यात्मिक जगत में गड्ढा नहीं मिलेगा तो नहीं जाऊंगा। इसलिए जब विवाह होता है तो उस सात जन्म के वो कुछ ये लिए जाते हैं कि सात जन्मों का साथ होगा, कितनी बड़ी मूर्खता है। सात जन्मों तक वही मिले, एक जन्म वो तो बाद में पता चलता है कि एक जन्म ही बहुत है, लेकिन वो वचन देते सात जन्मों तक साथ। कभी कभी पति पत्नी भक्त हो जाते तो कहते हम लोग साथ में आध्यात्मिक जगत जाएंगे। वो भी क्या जरूरत है, वहां भी मेरा मैं ही। तो ये हमारा मोह है कि हम इसमें आनंद लेने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग वो इंद्र की तरह हैं, इंद्र की कथा इसलिए बताई जाती है, पढ़े हुए हैं, आचार्य पुकार रहे हैं, भगवान बुला रहे हैं, शास्त्र बुला रहे हैं, आओ निकलो यहां से, लेकिन हम लोग जीना यहां मरना यहां ना, इसके सिवा जाना कहां। तो ये मोह है। तो ब्रह्मा जी ने क्यों रचना की, इसलिए कि हम आनंद ले सके। अगर इंद्र भूले नहीं होते कि वो इंद्र हैं और अपने आप को सुअर नहीं मानते तो कभी आनंद लेते नहीं। कैसे आनंद लेते, मान लीजिए वो सुअर के रूप में इंद्र को पूरा ज्ञान है कि मैं इंद्र हूं, देवताओं का राजा, और ये मल में गड्ढे में पड़ा हुआ हूं, क्या खा रहा हूं बदबू वाला, क्या इंद्र आनंद लेगा उसमें। इसी तरह अगर हमें ज्ञान हो जाए कि मैं कहां आध्यात्मिक जगत में भगवान की सेवा करना मेरा कर्तव्य है और मैं यहां इस गड्ढे में पड़ा हुआ हूं, क्या आनंद लेगा जीव। इसीलिए ब्रह्मा जी ने ये बनाया कि आनंद लो। हाँ, उसका उद्देश्य यह है कि अंत में भगवान को प्राप्त भी करो, लेकिन ये बनाया। और ये बनाने के बाद अगले श्लोक में वर्णन है कि ब्रह्मा जी प्रसन्न नहीं हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, ये क्या कर दिया मैंने। स्वाभाविक है, ब्रह्मा जी भक्त हैं भगवान के, भगवान से भागवत सुनी है, ज्ञान लिया है, तपस्या कर चुके हैं। तो जब उन्होंने देखा कि मैंने क्या बना दिया इन लोगों के लिए, तो ब्रह्मा जी बड़े दुखी हो गए, क्या रे ये क्या किया मैंने। और फिर उन्होंने चार कुमारों की सृष्टि की, चार कुमारों को प्रकट किया। तो चार कुमारों का ये चार कुमारों को प्रकट करना और ये पांच ये जो मोह बनाए ब्रह्मा जी ने, इसके दुख से क्या संपर्क है। इसका ये संपर्क है कि चार कुमारों को बनाकर ब्रह्मा जी ने इन पांचों मोहों को नाश करने के लिए चार चीजों को प्रदान किया। तो चार कुमारों की जो सृष्टि है, सनक सनातन सनत कुमार इत्यादि सनंदन, तो इनको चारों को प्रकट करके ब्रह्मा जी ने चार सिद्धांत दिए, चार चीजें दी जिससे ये मोह तम महामोह तामिश्र अंधतामिश्र सबका नाश हो सकता है। तो क्या चार चीजें दी, वैसे तो श्लोकों में कहा गया चार कुमार, प्रभुपाद तात्पर्य में समझाते हैं कि चार चीजें थी। सबसे पहली है सांख्य, दूसरी है योग, तीसरी है वैराग्य और चौथी है तपस्या। ये चार चीजों को ब्रह्मा जी ने दिया। तो पहली है सांख्य। सांख्य मतलब, सांख्य का अर्थ होता है कि जड़ पदार्थ और आत्मा, इनमें अंतर को जानना, उसको सांख्य ये कहते हैं। आगे आएगा इस सांख्य योग का वर्णन, कपिल भगवान कपिल करने वाले हैं। तो सांख्य दिया अर्थात व्यक्ति जान ले कि शरीर और आत्मा में अंतर है। देखिए एक तरफ मोह में डाला कि मैं ही शरीर हूं, मेरे में कोई अंतर नहीं है, लेकिन ज्ञान भी दे दिया क्योंकि ब्रह्मा जी को दुख हुआ ये मैंने क्या कर दिया। तो उन्होंने सांख्य दिया, सांख्य यानी पदार्थ, जड़ पदार्थ और आत्मा, चेतन और जड़ पदार्थ में अंतर को जानना। और दूसरा उन्होंने दिया योग। योग अर्थात कुछ क्रियाओं के द्वारा, योग वैसे शब्द का अर्थ होता है जुड़ना। योग शब्द संस्कृत की एक धातु युज से आता है, युज मतलब जुड़ना। तो योग का अर्थ है जुड़ना, भगवान से जुड़ना। तो ब्रह्मा जी ने पहले दिया कि भेद जान लो, अब भेद जानकर योग, भगवान से जुड़ने का प्रयास करो। तो दूसरा दिया उन्होंने योग, और फिर तीसरा उन्होंने दिया वैराग्य। तो जब भगवान से जुड़ना है तो क्या होना चाहिए हृदय में? वैराग्य। किससे? भगवान से, भौतिक चीजों से। तो तीसरा दिया उन्होंने कि इनसे वैराग्य। तो वैराग्य कब उत्पन्न होगा? जब भगवान से जुड़ने का प्रयास करेंगे। जब तक हम भगवान से जुड़ने का प्रयास नहीं करेंगे, वैराग्य कहां से आएगा हृदय में? फाल्गु वैराग्य होगा, वो झूठा वैराग्य होगा। ऐसे जो वैरागी जो समाज को त्याग देते हैं, किसी चीजों को त्याग देते हैं लेकिन भगवान को नहीं पकड़ते, फाल्गु है, झूठा वैराग्य है उनका। क्योंकि ऐसे वैराग्य का कोई लाभ नहीं। किसके लिए वैराग्य? अगर हम कहें कि हमें सब कुछ त्यागना है, हम घर घर त्याग देंगे, हम व्यापार त्याग देंगे, हम सारे कर्तव्यों को त्याग देंगे, तो ये गलत कहा गया है शास्त्रों में। इसको नहीं त्याग सकते। क्यों? क्योंकि त्यागने का उद्देश्य अगर भगवान है तब ठीक है, नहीं तो फाल्गु वैराग्य है। आप केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, आप आलसी बन रहे हैं, अपने कर्तव्यों को करना नहीं चाहते हैं, इसलिए वैराग्य का दिखावा कर रहे हैं। भारत में अगर कोई व्यक्ति सैफरन कपड़े पहनकर निकल जाए तो उसको खाने पीने की चिंता नहीं रहती है, है ना? कहीं चला जाए, कोई भी खिला देता है, कोई रहने को दे देता है, भारत पावन भूमि है। तो अगर कोई व्यक्ति केवल भगवे वस्त्र पहनकर इस उद्देश्य के लिए जाता है तो झूठा वैरागी, वो कोई वैरागी नहीं है, वो तो पाखंडी है, वैरागी नहीं, कि केवल अपना पेट भरने के लिए उसने भगवे वस्त्र धारण किए। तो इसलिए सही वैराग्य क्या है? भगवान से जुड़ने के लिए जब चीजों को त्यागा जाए वो सही दृष्टि में वैराग्य है। तो तीसरा उन्होंने दिया वैराग्य, और चौथा उस वैराग्य को उत्पन्न करने के लिए तपस्या, तप। अर्थात हम ये सीख सकते हैं कि अगर हमें इन चीजों से बाहर आना है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिन्न वेश, या फिर जैसे यहां कहा गया तमह, मोह, महामोह, तामिश्र और अंध तामिश्र, इन सारी अविद्या की अवस्थाओं से बाहर आना है तो हमें तपस्या करनी चाहिए। तपस्या के द्वारा वैराग्य उत्पन्न होना चाहिए, और उस वैराग्य से हमें योग, भगवान से जुड़ना चाहिए, और तब हम बड़ी आसानी से पदार्थ और आत्मा में भेद समझ सकेंगे। तो ये मार्ग है हमारे अविद्या से परे। अविद्या को विद्या से मारा जाता है, तो इसलिए विद्या लेना। तो ऐसे ब्रह्मा जी ने चार कुमारों की सृष्टि की, और फिर उन्होंने चार कुमारों से कहा कि बहुत प्रसन्न हूँ बेटा तुम पर, जाओ विवाह करो, थोड़ा संतान उत्पन्न करो। विवाह के लिए तो नहीं कहा, क्योंकि उस समय शायद विवाह के लिए कोई थे नहीं, चार कुमार पहली बार पहले ही प्रकट हुए, किससे विवाह करते, का संतान उत्पत्ति करो जाओ। तो चारों कुमारों ने मना कर दिया, नालायक पुत्र, सही है ना? पिता कहता है शादी करो, बेटा कहता है ब्रह्मचारी बनूंगा, पिता कहता है नालायक। चारों ने मना कर दिया। एक एक ने तो हाँ किया होता तो ब्रह्मा जी को थोड़ी संतुष्टि मिलती, चारों के चारों ने मना कर दिया कि ये क्या आप कह रहे हैं, अरे हमें आत्म साक्षात्कार करने समय कहाँ है, भगवान की भक्ति करें कि ये सब करें। तो उन्होंने कहा हम नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आ गया, गुस्सा आया लेकिन दिखा नहीं रहे थे। भागवत श्लोक में वर्णन मैत्रीपुटी कहते आ गया लेकिन दिखा नहीं रहे थे, क्यों? क्योंकि जानते थे कि ये लोग बड़े ज्ञानी हैं, अब इनके सामने मैं गुस्सा दिखाऊंगा तो बोलेंगे क्या ब्रह्मा जी आप गुस्सा करते हो, क्या बात है, आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए, आप तो बड़े पंडित आदमी हो, तो इसलिए शांत रहे। लेकिन कुमारों ने मना कर दिया। अब देखिए एक तरफ बात है कि पिता आदेश दे रहे हैं, और वो भी कौन पिता है, सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी, कोई साधारण पिता नहीं है, और उनके आदेश को ठुकरा दिया तो ये गलत है। चार कुमारों को ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये तो गलत उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत अच्छी बात लिखते हैं, बोलते गलत नहीं है। और प्रभुपाद एक बहुत सुंदर श्लोक देते हैं, नृणाम भूता देव ऋषि भूता तृणाम पितृणाम ना किंग करो नायम ऋणी च राजन सर्वात्मना या शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। प्रभुपाद कहते हैं कि वैसे साधारण दृष्टि में पिता और वो भी ब्रह्मा जी जैसे पिता, इनका आदेश का पालन करना, आदेश को मना कर देना, ये सही नहीं है। लेकिन जो वासुदेव परायण है, अर्थात जो भगवान की भक्ति के लिए ऐसा करता है, उसके लिए कोई गलती नहीं है। ब्रह्मा जी बोलते कोई उन्होंने गलत काम नहीं किया, सही किया। प्रभुपाल लिखते हैं ऐसे पिता का आदेश मना करना चाहिए जो आपको भौतिक भोगों में डालने के लिए कह रहा हो। तो इसीलिए हमारे ऊपर ऋण होते हैं, देव ऋषि भूतात्र नृणाम पितृणाम, देवताओं का, अन्य जीवों का, ऋषि मुनियों का, पितरों का, इन सब का ऋण हमारे ऊपर है। तो उसको ऋण को चुकाना होता है। देवताओं का ऋण यज्ञ करके चुका सकते हैं, ऋषियों का ऋण हम लोग अध्ययन करके, शास्त्र अध्ययन करके चुका सकते हैं, पितरों का ऋण श्राद्ध इत्यादि करके हम चुका सकते हैं। ये सारे ऋण दिए गए हैं जिनको चुकाना है, देव ऋषि भूताप्त नृणाम पितृणाम। लेकिन वो कहते हैं न किं करो नायम ऋणी च राजन, वो व्यक्ति ना ही किसी का ऋणी नहीं रह जाता, न ऋषियों का, न देवताओं का, न माता पिता का, न पितरों का, न अन्य जीवों का, किसी का ऋणी नहीं रहता वो। कौन? न किं करो नायम ऋणी च राजन सर्वात्मनः या शरणम शरण्यम। जो व्यक्ति सभी की जो आत्मा है उनकी शरण जाता है, गतो मुकुंदम, भगवान मुकुंद, मुक्ति प्रदाता मुकुंद, अगर उनकी शरण चला जाता है, सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम, उसके लिए कोई ऋण नहीं रह जाता। तो अगर केवल एक वासुदेव परायण भगवान की भक्ति के लिए अपने कर्तव्यों को कोई त्यागता है, पिता की बात को मना करता है, जैसे चार कुमारों ने कहा, प्रभुपाद कहते कोई चिंता की बात नहीं, एकदम सही किया। तो ऐसे चार कुमारों ने मना कर दिया, और फिर ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए, और क्रोध को दिखा नहीं रहे थे लेकिन फिर भी बनाए नहीं रख पाए, तो उनकी क्रोध से, उनकी भावों के बीच से, आंखों के मध्य है बाहों के बीच से एक बालक प्रकट हो गया, नीले लाल रंग का बालक, क्रोध के रंग का बालक, क्रोध से प्रकट हुआ था इसलिए क्रोध के रंग का बालक, और वो रोने लगा, प्रकट होते ही रो रहा था, और रोते रोते उसने पूछा कि क्या मेरा नाम क्या है, मेरा क्या स्थान है, मेरा कार्य क्या है, बताइए आप, ब्रह्मा जी से पूछा। तो ब्रह्मा जी ने कहा क्योंकि तुम इतना रो रहे हो इसलिए तुम्हारा नाम रुद्र होगा, रुद्र, शिव जी प्रकट हुए थे, और शिव जी को या जो रुद्र को उन्होंने 11 स्थान दिए रहने के लिए, और नाम भी दिए, 11 नाम दिए, पत्नियां भी दी, तुम्हारी पत्नियां भी होंगी, अलग अलग नाम पत्नियों के बताइए, ये तुम्हारी पत्नी होगी जिनमें उमा भी एक है, और अलग अलग स्थान दिए रहने के लिए, जैसे मन दिया, इंद्रियां दी, जल दिया, वायु, आकाश, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, ये सब दिया, ये सब आपके रहने के स्थान है। तो रहने के स्थान मतलब इन सब के द्वारा क्रोध प्रकट होता है, मन क्रोध प्रकट करता है, इंद्रियां प्रकट करती। जब व्यक्ति क्रोध में होता है देखिए उसका सारा चेहरा तमतमाने लगता है, जल क्रोध प्रकट करता है। जैसे कभी कभी समुद्र में जाते तो बहुत तेज समुद्र में तूफान आता है, वो जल का क्रोध है। पृथ्वी का क्रोध है कि जब पृथ्वी फट जाती है। वायु का क्रोध है जब बड़ी तेज हवाएं चलती हैं, तूफान आ जाता है, आंधी आती है। तो ये सारे क्रोध के लक्षण हैं। तो इसीलिए ऐसे स्थानों को उन्होंने रहने के लिए दिया। और फिर उन्होंने कहा कि अब तुम्हें पत्नियां भी दे दी हैं, अब तुम सृष्टि करो। क्योंकि ब्रह्मा जी चाहते थे सृष्टि होना है। चार कुमारों को कहा वो तो बेकार है, तो वो लोग तो उन्होंने किया नहीं। अब शिवजी हुए तो शिवजी से कहा तुम भी मेरे पुत्र हो, मुझसे प्रकट हुए हो, अब तुम करो सृष्टि। शिवजी ने कहा कोई चिंता की बात नहीं, आज्ञा का पालन होगा। और उन्होंने सृष्टि करना प्रारंभ कर दिया। और कैसी सृष्टि, क्योंकि शिवजी तमोगुण के अधिष्ठाता हैं, तो सारे ऐसे सृष्टि होने लग गई कि जो लोग ब्रह्मांड को खाने के लिए भागने लगे, ब्रह्मा जी पर ही आक्रमण कर दिया। अब ब्रह्मा जी देख रहे ये क्या हो रहा है, मेरे ऊपर ही आक्रमण कर रहे हैं। शिव जी को बुलाया रुक जाओ रुक जाओ। शिव जी ने कहा क्या हो गया, आपने ही तो आदेश दिया था सृष्टि करने का, कर दी सृष्टि मैंने, भूतों की प्रेतों की, ये सारे भर दिया और सब वो खाने भाग रहे हैं पूरे ब्रह्मांड को। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा एक काम करो, तुम तपस्या करो जाके, ये जो तुम्हारा काम है ना ब्रह्मांड को नाश करना, ये प्रलय के समय है, अभी नहीं है। मैं भूल गया कहा तुमको मैंने सृष्टि के लिए कह दिया, जाओ तपस्या करो, जब प्रलय का समय आएगा तब बुलाऊंगा। शिव जी ने कहा ठीक है, जाकर तपस्या करने लग गए। शिव जी आदेश का पालन करते हैं, सृष्टि के लिए कहा सृष्टि कर दे, अभी तपस्या के लिए कहा तो तपस्या के लिए चले गए। तो ऐसे ब्रह्मा जी ने रुद्र का पालन इत्यादि कर दिया। अब ब्रह्मा जी को सृष्टि करनी तो थी, अब कोई कौन करे, चार कुमारों ने मना किया, शिव जी ने तो हाँ किया, लेकिन वो ब्रह्मा जी ने ही मना कर दिया, बस बस बहुत है। तो फिर उन्होंने 10 पुत्रों को प्रकट किया, उनके 10 पुत्र अत्रि मरीचि पुलत्स्य पुलह इत्यादि, ऐसे 10 ऋषियों को, महान ऋषियों को प्रकट किया कि जो आगे चलकर प्रजनन कर सकें। और उन्होंने साथ ही साथ नारद मुनि भी प्रकट हुए, 10 पुत्रों में नारद मुनि भी आते हैं जिन्होंने प्रजनन नहीं किया, लेकिन बाकी ऋषियों ने किया। और फिर उन्होंने कर्दम मुनि को भी प्रकट किया ब्रह्मा जी ने, वो उनके छाया से प्रकट हो गए कर्दम मुनि। तो ये 2 जो ऋषि हैं, एक कर्दम मुनि और नारद मुनि, ये दोनों प्रभावित नहीं हुए गुणों से। बाकी जो अन्य ऋषि हैं वो रजोगुण से प्रभावित थे, इसीलिए आगे उन्होंने बड़ी उत्पत्ति की, लेकिन कर्दम मुनि प्रभावित नहीं थे, ऐसा प्रभुपाद तात्पर्य में समझाते हैं। तो ये सारे ऋषि प्रकट हो गए। कर्दम मुनि 10 के अलावा हैं, 10 पुत्रों को छोड़कर कर्दम मुनि को भी उन्होंने प्रकट किया। और फिर उनसे प्रजनन करने के लिए कहा कि वे लोग आगे प्रजनन कर सके। तो ये 21वें श्लोक से लेकर 27वें श्लोक तक हम ये देखते हैं कि कैसे 10 पुत्रों को उन्होंने प्रकट किया और अन्य लोगों को भी प्रकट किया। अब इतना कहने के बाद 28वें श्लोक से लेकर 33वें श्लोक तक मैत्री मुनि एक प्रसंग कह देते हैं। वैसे ये प्रसंग इस समय पर हुआ नहीं था, लेकिन मैत्री मुनि ने कह दिया। और क्या प्रसंग था, मैत्री मुनि ने कहा कि विदुर हमने सुना है, इसलिए स्पष्ट कहते कि ये नियम से बता रहे हैं उसमें नहीं, हमने सुना है कि एक बार ब्रह्मा जी की पुत्री प्रकट हुई वाक, वाक के रूप में, उसका नाम था वाक, तो बहुत सुंदर थी। ब्रह्मा जी की पुत्री प्रकट हुई और ब्रह्मा जी ने जैसे उस सुंदर पुत्री को देखा वो आकर्षित हो गए अपनी ही पुत्री के प्रति और भागने लगे उसके पीछे। और ये सारे पुत्र खड़े हैं प्रजापति, इन्हों को बड़ा आश्चर्य, ब्रह्मा क्या कर रहे हैं, इतने कामुक हो गए, अपनी ही पुत्री के पीछे भाग रहे हैं। और ब्रह्मा जी भागने लगे। और उस समय जो प्रजापति इत्यादि थे उन्होंने बोला, ब्रह्मा जी को समझाइए आप क्या कर रहे हो, आप ब्रह्मा हो, अरे आपको अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना है, आप तो सारे सृष्टि के प्रमुख हो, भगवान के भक्त हो, ये क्या कर रहे हो आप, इतने कामुक हो गए, इतना काम वासना बढ़ गई। प्रभुपाद बहुत सुंदर बात तात्पर्य में समझाते, तात्पर्य का प्रारंभ ही करते हैं नवे स्कंद का एक श्लोक से, बलवान इंद्रिय ग्राहो। इंद्रियां बड़ी बलवान होती हैं और इसीलिए वे कर्षति, ऐसे उस व्यक्ति को भी कर्षक खींच लेती हैं जो बुद्धिमान है। तो प्रभुपाद समझाते हैं कि ये क्यों हुआ। दरअसल प्रभुपाद कहते हैं ये इस कल्प में नहीं हुआ, ये किसी और कल्प की बात है, ये उस कल्प में नहीं हो सकता जब भगवान से उन्होंने चतुश्लोकी भागवत सुनी है। अभी अभी चतुश्लोकी भागवत सुन ली, भगवान ने स्पष्ट सामने सुना दिया, फिर भी ब्रह्मा जी मोह में, फिर भी काम वासना। तो प्रभुपाद कहते नहीं, ये पहले कभी हुआ था, ये अभी नहीं हुआ। तो ब्रह्मा जी हर दिन में ऐसे करते तो एक किसी दिन में हुआ होगा। तो ब्रह्मा जी भागने लगे, प्रजापतियों ने कहा कि आप ब्रह्मा हैं, ये सब आपको शोभा नहीं देता, ये आप क्या कर रहे हैं। और फिर मानो फिर भी ब्रह्मा जी नहीं सुन रहे थे, कुछ तो शर्म होनी चाहिए व्यक्ति को कि उसके बच्चे, उसके पुत्र उसको कह रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, फिर भी नहीं सुने। तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना प्रारंभ की, पुत्रों ने, कि अब तो भगवान ही बचा सकता है। तो पुत्रों ने भगवान से प्रार्थना की कि इनको कुछ बुद्धि दें। और फिर ब्रह्मा जी को ये आया कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ फंस गया, ये क्या कार्य मैंने कर दिया। और फिर शोक में, दुख में, ग्लानि में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, अपने शरीर को छोड़ दिया, दूसरा शरीर ग्रहण कर लिया। क्या करा मैंने इस शरीर, इतनी ग्लानि हुई। प्रभुपाद लिखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा घृणित कार्य करे तो उसको अपना शरीर छोड़ देना चाहिए। तो ऐसे उन्होंने कार्य कर लिया। और बहुत महत्वपूर्ण बात प्रभुपाद समझाते हैं, बलवान इंद्रिय ग्रामो, कि इंद्रियां बड़ी बलवान हैं, व्यक्ति को खींच लेती हैं। यही प्रश्न अर्जुन ने भगवद गीता में श्री कृष्ण से किया था, अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छनपि वाष्णेय बलादीव नियोजितः। बहुत सुंदर प्रश्न था अर्जुन का। अर्जुन ने कहा कि अथ केन प्रयुक्तोयम, ये ऐसी क्या चीज है जो व्यक्ति को इस काम में लगा देती है, गलत काम में। अथ केन प्रयुक्तम पापम चरति पुरुषः, कि व्यक्ति, अच्छी बुद्धि वाला व्यक्ति भी पाप कर बैठता है, तो ऐसा क्या है। अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वाष्णेय, इच्छा नहीं होती उसकी, अनिच्छन्नपि, इच्छा न होते हुए भी वो पाप कर बैठता है, पापम चरति पुरुषः। तो अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादीव नियोजितः, ऐसा लगता है कि उसको जबरदस्ती उसमें लगाया जा रहा है, बलादि, बल यानी बल से उसको लगाया जा रहा है। तो अर्जुन ने प्रश्न किया कि क्या है, अत केन प्रयुक्त हो यम पापम, क्यों व्यक्ति पाप करता है, अनिच्छन, कोई इच्छा नहीं है, फिर भी ऐसे लगता है कि उसको जबरदस्ती लगाया जाता है, तो क्या है। और तुरंत भगवान उत्तर देते हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्यनम इह वैरिणम। भगवान कहते हैं, तीसरे अध्याय में वर्णन आता है, भगवान कहते हैं कि ये काम है, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा, रजोगुण से उत्पन्न होने वाला काम और क्रोध, महाशनो महापापमा, ये पाप करता करवाने में यही लगाता है, नाश करने के लिए भी यही लगाता। तो ये है, दूसरे अध्याय में भी भगवान ये कहते हैं, इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। भगवान कहते हैं कि विवेकी पुरुष, विवेकी यानी जो सही क्या है गलत क्या है जानता है, वो भी, उसकी भी, वो भी गलत काम कर बैठता है। कैसे, इंद्रियाणि प्रमाथीनि, इंद्रियां बड़ी बलवान हैं, हरन्ति, हरण कर लेती हैं किसको, प्रसभं मनः, प्रसभं यानी बल से मन को। और इसीलिए प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि व्यक्ति को बहुत सावधान रहना चाहिए। ब्रह्मा जी का उदाहरण हमारे सामने है, क्यों मैत्रेय मुनि ने यह उदाहरण दिया, प्रभुपाद कह रहे हैं अभी तो नहीं हुआ था, फिर मैत्रेय मुनि ने क्यों कह दिया, हमें सिखलाने के लिए। वैसे मैत्रेय मुनि कहना नहीं चाहते थे, ब्रह्मा जी के विषय में ऐसी बात कहना नहीं चाहते थे, लेकिन हम सबके सामने उदाहरण रखने के लिए कि अगर ब्रह्मा जी प्रभावित हो सकते हैं तो हमारी क्या बात है। इसलिए कितना सावधान रहना चाहिए इन चीजों से। तो प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो सुख व्यक्ति लेना चाहता है, काम से जो सुख लेना चाहता है, यही भौतिक जगत में बंधन का कारण है। इसी के द्वारा हम लोग बंधे रहते हैं। और ब्रह्मा जी का उदाहरण हमारे सामने है, इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं कि बहुत व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए, कभी भी ऐसे कार्यों में लिप्त नहीं होना चाहिए जिससे उसका पतन हो जाए। तो फिर ऐसे ये प्रसंग का वर्णन किया, लेकिन तुरंत इसके बाद फिर 34वें श्लोक से मैत्री मुनि उन चीजों का वर्णन करने लगे जो ब्रह्मा जी ने अलग अलग और चीजें प्रकट की, विदुर ने प्रश्न किया और आगे बनाने लगे। वो कारण ये था ये बताने के लिए कि इसका अर्थ ये नहीं है कि ब्रह्मा जी दूषित हो गए। कभी कभी कोई बहुत श्रेष्ठ अवस्था में रहने वाला व्यक्ति से अगर गलती से कोई कार्य हो जाता है, प्रभुपाद लिखते हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो व्यक्ति दूषित हो गया। तो ब्रह्मा जी दूषित नहीं हुए क्योंकि उनसे अब धर्म प्रकट हो रहा। आगे वर्णन की कि ब्रह्मा जी से धर्म आया, ब्रह्मा जी से अधर्म आया, ब्रह्मा जी से वेद आए। तो जिस व्यक्ति से धर्म आ रहा है, वेद आ रहे हैं, वो व्यक्ति कैसे दूषित हो सकता, ये समझाने के लिए ही इसको कहा गया कि ब्रह्मा जी दूषित नहीं हुए। ये नहीं मानना चाहिए कि ब्रह्मा जी पतन हो गया। और इसका अर्थ एक है कि जब कोई व्यक्ति श्रेष्ठ स्थिति पर हो, उसके कार्यों को हम समझ नहीं सकते। वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञ न बुझाए। हमें अपना निर्णय नहीं लेना चाहिए अपनी बुद्धि से किसी व्यक्ति के विषय में जो श्रेष्ठ स्तर पर है, हमसे श्रेष्ठ स्तर पर है, उसके विषय में हमें निर्णय नहीं लेना चाहिए क्योंकि हम जान नहीं सकते, हमारी बुद्धि सीमित है। तो ऐसे ब्रह्मा जी ने फिर रचना की। ब्रह्मा जी के मुख से चारों वेद प्रकट हुए, फिर यज्ञ के सामग्रियां प्रकट हुई, और फिर धर्म प्रकट हुआ, अधर्म प्रकट हुआ। ये सब ब्रह्मा जी अब धीरे 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 सृष्टि की रचना करने लगे। और इसके बाद करीब 50वें श्लोक से ब्रह्मा जी सोचने लगे कि मैंने ये सब तो प्रकट कर दिया, फिर भी प्रजनन नहीं हो रहा है, सृष्टि में संतानें नहीं बढ़ रही हैं, क्या कारण है, अभी तक भरी नहीं है सृष्टि, और मेरा कर्तव्य है, मेरी सेवा है सृष्टि को भरना जीवों से, लेकिन यहां देख रहे नहीं हो रहा। तो ऐसे जब वो विचार कर रहे थे तो ब्रह्मा जी स्वयं दो भागों में बट गए, एक पुरुष और एक स्त्री। एक प्रकट हुए स्वयंभू मनु और दूसरी षटरूपा। तो स्वयंभू मनु और षटरूपा जो ब्रह्मा जी के ही रूप हैं, सृष्टि के सृजन के लिए अलग हुए हैं, तो फिर ब्रह्मा जी से आए हैं, तो फिर उन दोनों ने आगे फिर प्रजनन क्रिया प्रारंभ की। तो फिर स्वयंभू मनु के 5 संतानें, 2 लड़के और 3 लड़कियां, उत्तानपाद और प्रियव्रत, ये 2 पुत्र हुए और 3 पुत्रियां हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। तो अब इनका वर्णन अगले प्राय 1-2 स्कंदों तक उनके वर्णन होगा। देवहूति का वर्णन तो अभी आएगा तुरंत इस प्रसंग के बाद, जब वराहदेव की कथा समाप्त हो जाएगी, और फिर आगे भी उत्तानपाद और प्रियव्रत महाराज की कथा भी 5वें स्कंद तक चलेगी। तो ऐसे स्वयंभू मनु के ये पुत्र हुए और फिर आगे प्रजनन प्रारंभ हुआ। तो ऐसे ये अध्याय है, और अब अगला अध्याय से भगवान वराहदेव की लीला प्रारंभ होगी, कैसे वराहदेव प्रकट हुए, कैसे उन्होंने हिरण्याक्ष का वध किया, और फिर आगे कैसे लीला हुई। तो ये हम लोग कल से सुनना प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्ण।